वो नहीं होता जो किताबों में हो, इल्म वो होता है कि जो के जहन में रहे ना। तो अगर यकीन करें कि आप लोग यहाँ पढ़ते हुए अगर घर में जाकर एक दफ़ा इस पूरे हिस्से को बुक का जो हम पढ़ते हैं वो, फिर जो कोई नोट्स हैं उसको ले लें, और तीसरी चीज़ ये कि मुहासबा कर ले कि क्या वाकई मैं इस चीज़ को जो ले रही हूँ इसको अखज़ भी कर रही हूँ कि नहीं। दिल पे जम जाएगा, आपको ऐसे लगेगा कि ये सारा कुछ आपको अजबर हो गया। चले इन इनसे शेयरिंग कराएं। उम्मे माविश, अंबर जी आपने भी जाके कुछ सोचा इसके?
आज नहीं है, बस ये आज दादाजी नहीं है,
अच्छा
आज
खैरी,
वो
इसीलिए
शायद
मैंने
किसी
उनसे
मीटिंग
पूछा।
में थे
जी
तो उनकी वजह
शाहीन,
से नहीं आ पाई। शरत है वो बात कर रही
शाहीन जी से बात करवाएं।
थी। शहीन जी भी पाकिस्तान तशरीफ ले गई हैं 4 हफ्ते के लिए, वो भी नहीं है।
माशाल्लाह जी, मुसरत आप शेयर कीजिए।
मुसरत आपने कर दिया जी। उजाला आप
मेरे तक आवाज़ नहीं, मेरे हाले स्टूडेंट दूर से बात कर रहे हैं ना। इंशाअल्लाह ताला, यानी पिछला वक्त तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम अब आगे अच्छा वक्त अच्छा काम करके अपने आप को इंशाअल्लाह ताला पिछली चीज़ों का किफा कफारा अदा कर सकते हैं। ये बताइए कि आज हमने क्या टॉपिक पढ़ना है? सब मिलकर एक आवाज़ में बोलें,
ये हमने 63
सब बोलेंगे,
किताबों के बारे में
स्टूडेंट्स का
पढ़ा।
वक्त होता है जी। क्या टॉपिक है आज हमारा? बोल
नाफरमानी का 63
गुना,
सी लेयर्स हो गए।
गुना और तौबा।
गुनाह और तौबा,
तो इंशाल्लाह आज हम इस पे अपने ऐसे ही
ये
कि जैसे एक
नाफरमानी
जी पेज 63 पे गुना और तौबा है, आप लोग जो कह रहे हैं।
जी,
चलिए हम
ये
इंशा
पहले 62 बताया, पहले पता नहीं किसने 63 बताया, मैंने 61 कहा है सीधे, पहले
चलिए
61 सीधे बताया है कि 61 से शुरू होगा, लेफ्ट सीधी है,
ठीक है
लेकिन
इंशाल्लाह तआला अब
सिक्सटी वन से
हम
शुरू होगा हमारा नाफर मानी वो जो पेंसिलों के निशान है।
तिलावत थोड़ी सुनेंगे गुनाह के बारे में, और इंशाल्लाह फिर शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने वेल प्रिपेयर्ड रहना है, इससे भी बेहतर तरीके से पहले से हर चीज़ के लिए तैयार है, ताकि जब हम ये बात कर रहे हों तो उस वक़्त सब साथी हमारे साथ हो। ठीक है इंशाल्लाह। अब ये तिलावत सारी मैं वो आयतों की प्ले करूँगी जिसमें गुनाह और तौबा का तस्कर है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को सामने रख के सुनना है कि मैं किस तरीके से अपना मुहासबा कर सकती हूँ और बेहतरीन तरीके से इस चीज़ से फ़ायदा उठाना है। क्योंकि आप देखिए कि जब हम कुरान की तिलावत सुनते हैं और उसके बाद फिर अपना मुहासबा करते हैं और कोई भी टॉपिक सुनते हैं, तो उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे दिल खुल गया है, और दिल इंसान के लिए वो काम सारे आसान, जिस चीज़ पे दिल आ जाता है ना फिर वो बाकी काम सारे खुद ही हो जाते हैं इंशाअल्लाह ताला।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نبئ عبادي نبئ عبادي نبئ عبادي الله ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا
وإذا تليه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير گناہوں کے برے اثرات آج ہم اس میں سے کنٹینیو کریں گے پیج 61 سے کہ کس طریقے سے گناہ ہمیں مصائب میں مبتلا کرتے ہیں اور جب ہم کسی بھی گناہ کو ہلکا جانتے ہیں تو بعد میں اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سزا دیتا ہے تو آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے نافرمانی کی سزا حکومتی منصب پر براجمان حکمرانوں کے متعلق شراب خوری فسق و فجور ظلم کرنے اور قابل حد جرم کے مرتکب ہونے کے متعلق بار بار سنتے رہتے ہیں اور سوچتا ہے انسان کہ ان پر کب حد قائم ہوگی اور حد کون قائم کرے گا حکمران تو یہ خود ہیں چنانچہ سلسلہ چلتا رہا وقت رفتہ رفتہ گزرتا رہا میں عدم اقامت حد کے بارے میں سوچوں میں گم تھا اتنے میں میں نے دیکھا کہ وہ قدرتی آفات کی لپیٹ میں آ کر لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گئے اور عجیب حالت سے دوچار ہو گئے ان کے ظلم کا انتقام مال چھن جانے سے ہوا اور حد سے کئی گنا زیادہ سزا پائی چنانچہ طویل زمانہ پس دیوار زندہ یعنی مراد کیا ہے قید کے پیچھے رہنا ایسی بیڑیوں میں جکڑے رہے اور ایسی ذلت دامنگیر ہوئی کہ حد لگنے سے بھی کئی گنا زیادہ تھی تمام مظالم کے بعد بعض ان میں سے قتل ہوئے تو اسی سے میں نے سمجھا کہ گناہ پر فوراً سزا نہ ہونا ڈھیل ہے ہر گناہ کی سزا آخرت میں تو ہے دنیا میں بھی ملنا ضرور ہے کیا سمجھ آیا اس پیراگراف سے پہلی بات یہ ہے کہ نافرمانیوں کی سزا ملتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی دنیا میں مل جاتی ہے اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے سنبھال دیتا ہے تیسری بات یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ فوری طور پہ اس لیے بھی پکڑ لیتا ہے کہ وہ مزید گناہوں سے بچ جائے کیونکہ جب ایک انسان کو پہلی دفعہ پہ پکڑ ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ آئندہ کے لیے بچ جاتا ہے یہ وہی بات ہے کہ جیسے پہلی غلطی پہ ملازم کو اگر آپ پکڑ لیں تو وہ توبہ کر کے چھٹ جائے گا نہیں میں نے آپ کو واپس کرنے تھے پیسے میرا چوری کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن اگر وہ پہلی غلطی پر چھوڑ دیا جائے اور آپ کوئی نوٹس نہ لیں تو پھر وہ اگلی غلطی جان کے کرے گا اور اس کو ایسے لگے گا کہ میں تو بچتا ہی رہتا ہوں تو لہٰذا ना तो फौरन किसी की पकड़ को देखकर ये सोचें कि ये बुरा है। कुछ लोगों को अल्लाह ताला गलती करने पर फौरन पकड़ कर उन पर रहम करता है, ये लिख लें। सवाल है क्या रहम है? रहम ये है कि क़यामत के दिन उनके गुनाहों की लिस्ट छोटी होगी, क्योंकि ज़ाहर तो के कहो खो लोग तो इतनी गलतियाँ करते हैं, इतने गुनाह करते हैं, तो उनको तो कुछ नहीं होता। तो आप कहें कि चूँकि अल्लाह को आपसे प्यार है, अल्लाह सुबहाना ताला आपको पाक रखना चाहता है। जैसे कोई दूसरा तमाशा देख रहा होगा ना, तो वो देखेगा बच्चा जो करता है करे, मुंह पे कुछ रंग लगा रहा है, हंसेंगे बोलेंगे, लेकिन माँ आएगी देखेगी बच्चे ने अगर कोई ऐसी गलत चीज़ पकड़ी, फौरन उसके हाथ से लेगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरा बच्चा नुकसान भी ले सकता है इससे, और दूसरी बात है कि बाद में ये फिर इसका चेहरा साफ करना मुश्किल होगा। तो अल्लाह ताला बंदे को बाज़ दफ़ा फौरी पकड़ के उस पर रहम करता है, और बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को छोड़कर। अब इसमें देखिए हुक्मरानों की बात हुई है ना, तो बाज़ दफ़ा कुछ हुक्मरान ऐसे होते हैं कि जो ऐसे लगता है कि जुल्म कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें करते जा रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ा नहीं जा रहा होता। क्यों? कि उनका दिल ख़राब है। और एक छोटी सी बात लिख लें अपने लिए, ये अल्लाह ताला का एक आपके लिए प्यार और उसका रहम है। दुआ भी किया करें कि अल्लाह तू मुझे पहली गलती पे ही रोक ले, मुझे ज़्यादा गंदा होने ही ना दे। आप देखिए कि कपड़ा थोड़ा सा गंदा और आप उसको फ़ौरन साफ़ कर लें, धो लें, कोई दाग लगा तो धो लें, तो आप काफ़ी दिन तक उसी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा गंदगी हो जाती है, लग जाती है, तो फिर वो गंदगी बार बार उसके ऊपर निशान पड़ते रहते हैं, तो उस इंसान को अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद अगली चीज़ देखिएगा, ये बहुत ही अहम टॉपिक है, मसाइब में इब्तला के वक्त का तरीका। यानी जब मुसीबतें आती हैं और इंसान उसमें मुब्तला कर दिया जाता है, उस वक्त क्या करे? देखिए ये बातें पहले से सीखी होंगी ना तो याद रहेंगी। जब मुश्किल आती है बंदे की, सबसे पहले मत मारी जाती है। बस वह तो हालात ऐसे हो जाते हैं ना गुफ्ता बे कि इंसान दुआ भी नहीं मांग सकता, हाथ उठे होते हैं दिमाग कहीं और होता है, कभी समझ नहीं आती, कभी किताब नहीं ढूंढी जा रही, कभी कुछ नहीं। और उस वक्त रिएक्ट क्या करना है, ये पढ़ने लिखने का टाइम नहीं होता, ये इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। इसको आप पहले समझिए। देखिए आप जितनी देर मर्जी लगाएं ड्राइविंग सीखने में, थ्योरी पास करें, आप प्रैक्टिसेस करें, लेकिन जिस वक्त आप हाईवे पे चल पड़े, क्या उस वक्त सीखने का टाइम है? क्या उस वक्त आप कुछ किताब खोल के पढ़ सकते हैं? क्या उस वक़्त आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ आएगी कि अच्छा मैं जल्दी से अपने आप को ठीक कर लूँ और मैं इन चीज़ों से इधर कर दूँ? नहीं, उस वक़्त तो किताब खोलना हलाकत में जाने का ज़रिया बनेगा। तो आइए पढ़ते हैं, मसाइब के ख़त्म होने का वक्त मुकर्रर है, ये लिखिए। देखिए आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में मुब्तला है ना इस वक्त, ये जुमला लिखिए, यह अपने वक्त पर ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, वो वक्त सिर्फ़ अल्लाह के इल्म में है, तो तकलीफ में मुब्तला शख्स के लिए इब्तला ख़त्म होने तक सब्र से काम लेना ज़रूरी है। वक्त से पहले परेशानी का कोई फ़ायदा नहीं और इंसान पर सब्र करना वाजिब है। अगरचे तकलीफ़ और मुसीबत में मुब्तला होने की सूरत में दुआ की इजाज़त है, मगर दुआ भी सब्र के साथ फ़ायदा मंद होती है और समर आवर होगी। यानी आप दुआ करते रहें, फल बाद में मिलेगा। और दुआ करने वाले के लिए जल्दबाजी करना मुनासिब नहीं, बल्कि सब्र, तस्लीम और रज़ा के साथ इबादत और इताअत इलाही में लग जाए। इन तमाम फसाद के असबाब को तर्क कर दे जिसके सबब से ये मुश्किल आ पड़ी। तकलीफ से जल्दी छुटकारे की दरख्वास्त करना मुकाम अबूदियत के मुनाफी है। अला मुकाम अबूदियत अल्लाह के फ़ैसले पर रजामंदी और सब्र है, इसी को लाजिम पकड़ना चाहिए। कसरत दुआ के ज़रिए इल्हाह और जारी करना बहुत बेहतर है। दुआ से इरास करना हराम है और जल्दबाजी से काम लेना तदबीर के ख़िलाफ़ है। इस फ़लसफ़े को खूब समझ ले, इससे तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करना आसान होगा। अब मैं आपको चंद जुमलों की सूरत में लिखाती हूँ, बहुत अहम बात है। नंबर एक, हर मुसीबत के ख़त्म होने का वक्त मुकर्रर है। फर्स्ट थिंग, शोर मचाएं, चीखें चिल्लाएं, रात अपने वक्त पे ही ढलेगी। आपके मुझे डर लग रहा है, मुझे अंधेरा अच्छा नहीं लगता, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, आप और मैं सूरज को घुमा के जल्दी नहीं ला सकते, पहली चीज़। दूसरी बात, कब ख़त्म होनी है इसका इल्म अल्लाह को है, बात वाज़े। देखिए दो हथकड़ियाँ हैं ये आपके मेरे हाथ में, नंबर एक मुसीबत अपने वक्त पर ख़त्म होगी, और दूसरी बात है कि ये मुसीबत कब ख़त्म होगी ये अल्लाह को सिर्फ पता है। तो फिर क्या किया जाए? तीसरी बात, तकलीफ़ में जो मुब्तला है वो फिर सब्र करे। ठीक है, आपका मेरा काम क्या? सब्र कीजिए। ठीक है, सब्र वाजिब है। फिर अगली बात, मुसीबत में परेशान होने का फ़ायदा ही कोई नहीं, बल्कि मुसीबत दो चंद होती है। देखिए ना, चोट लग गई तो सब्र करें। बच्चे को चोट भी लगी, फिर ऊपर से रो भी रहा है, फिर तड़प रहा है, तो चोट दर चोट हो गई और हिलने जुलने से हो सकता है खून और भी निकले, तो इंसान सब्र करे। फिर अगली बात यह कि दुआ कर सकते हैं, लेकिन सब्र की शर्त के साथ। कुछ लोग कहते हैं आज दुआ मांगी फ़ौरन कबूल हो जाए, जल्दी से जल्दी, कोई भी इसमें टाइम ना लगे। नहीं, दुआ कीजिए लेकिन वक्त का इंतज़ार कीजिए। फिर अगली बात क्या है कि सब्र और तस्लीम और रज़ा के साथ इबादत और इताअत में लगें। पहली चीज़ क्या, यानी दुआ करनी है, सब्र करनी है दूसरी चीज़, बल्कि पहली क्या थी, सब्र करना, फिर दुआ करनी है, तीसरी चीज़ है तस्लीम और रज़ा, अल्लाह से राज़ी रहिए। रदीतु बिल्लाहि रब्बन, मेरे रब ने मेरे लिए जो सोचा वो ठीक ही होगा ना। कभी माँ तो नहीं बच्चे को तकलीफ़ देती, इंजेक्शन भी लगाती है, उस वक्त बच्चा कहेगा माँ बड़ी ज़ालिम है, लेकिन माँ को पता है कि ये आज इंजेक्शन, बल्कि कल उससे बुखार भी हो जाना है इसको, बट इसके बाद इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ से बच जाएगा। ठीक है, फिर अगली चीज़ क्या है, इबादत और इताअत में लग जाए। रुबावेला करना, रोना धोना, परेशान होना, उसको सुना, उससे पूछ, उससे कर, क्या होगा जी, एंड ऑफ द डे क्या है, आप और थक जाएंगे, आपके सर में दर्द होगा, आपकी भवें तनी होंगी, बोल बोल के गला खुश्क होगा, अगर रो भी पड़े तो आंखें भी जलेंगी, और सारा जिस्म आपका खिंचा होगा, आपको ऐसे लगेगा कि मेरे मसल्स खिंच गए हैं। ठीक है, फिर अगली चीज़ छठा नंबर है गालिबन, फसाद के इसबाब को तर्क करें, यानी एक तरफ नेकी करें, इबादत करें, इताअत करें, इबादत और इताअत का फ़र्क भी समझ लें, ये समझना है तो अल्लाह माफ़ करे एक शादी अटेंड करके आ जाए, कई इबादत गुजार वहाँ इताअत इलाही के फंदे गिरा के फिर रहे होते हैं। देखिए, पांच वक्त की नमाज़ पढ़ना इबादत है बिलफर्ज, तो अल्लाह की हुक्म को मानना उसकी इताअत है। आज कितने लोग हैं नमाज़ रोज़े नहीं छोड़ते अल्लाह के हुक्म से, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन इताअत नहीं करते, और उस वक़्त किन की इताअत करते हैं, रिश्तेदारों की, और किन की इताअत करते हैं, बच्चों की, और किन की करते हैं, बच्चों के ससुराल की, और आप देखिए हम सारी दुनिया की इताअत करते हैं लेकिन असल में अंदर में अपने नफ्स की इताअत कर रहे होते हैं, क्योंकि मज़ा आ रहा होता है, बुरा भी लग रहा हो तो फिर भी कहते हैं चलो कुछ नहीं ना, कुछ थोड़ा सा रौनक मिल रही सही। तीसरी चीज़ फिर फसाद को सबब, फसाद रोकिए, गुनाह देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि उस गुनाह का ताल्लुक आपकी उस मुसीबत से ही हो, कोई और देख ले, कभी ज़िंदगी में कुछ और गलत काम किया हो, किसी का मामला आपसे बिगड़ा है तो हो सकता है किसी का आपने बिगाड़ा हो ज़िंदगी में, आज कोई आपका हक मारा है, शायद कल आपने किसी का हक मारा था, उसको जहन में रखिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए कि वो सबब ढूंढिए जिसकी वजह से ये तकलीफ़ आई, मसलन आप देखिए ना कि पेट में दर्द है, सबब क्या है कि आप जली हुई रोटी खा रहे हैं और स्टिल खा रहे हैं तो रोटी छोड़नी पड़ेगी ना, या ख़राब चीज़ खा रहे हैं, पाँव में बहुत दर्द है, देखिए जूता तो नहीं तंग, कोई ज़्यादा हील वाला जूता तो नहीं पहना, सबब दूर किए बगैर सिर्फ दुआ करना बेकार बात है। ये तो ऐसे कि किसी को घर से स्मेल आ रही है और बैड स्मेल है, बैठ के दुआ करे हाय ये बू दूर हो जाए, हाय ये बदबू दूर हो जाए, नहीं आप उठिए देखिए गंदगी है किस चीज़ की, हो सकता है कोई चूहा मरा हो सकता है कोई गंदगी फेंक गया हो, उसको फेंके तो अपनी ज़िंदगी से फिर ऐसे वक्त में चुन चुन के गुनाहों को निकालें। फिर इसके बाद आप देखिए कि अबूदियत का मुकाम जब आपको मिल जाएगा ना, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, उसके बाद तो बस कह लीजिए कि खैर के रास्ते होंगे। कोई कहता है मैं दुआ ही नहीं करती, मैं नहीं करता दुआ, मुझे क्या मिला, तो ये हराम है, याद रखिएगा, अल्लाह ने बंदे को बंदा बनाया है, तो यकीनन आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब अगर आप ये पांच छह नुक्ते आप उंगलियों में लिख लें और एक छोटा सा इसका एक कोई बुक मार्क बना लें, कोई रिमाइंडर बना के फ्रिज पे लगा दें, कंप्यूटर स्क्रीन पे लगा दें, घर के दरवाजे में लगा दें, इधर उधर लिखा होगा ना, जब मुश्किल आएगी उस वक्त याद आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त जब मुश्किल आती है उस वक्त ये सारा भूल जाना है अगर आपके अंदर नहीं उतरेगा, तो इसको हिफ्ज़ कर लीजिए ये पाँच छः नुक्ते, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे तकलीफ़ का असर ही ख़त्म होगा। ऐसे ही ना जैसे बच्चे को चोट लगे तो माँ उसको फिर कोई चीज़ दिखाती है, वो देखो चांद, वो देखो कौवा, वो चिड़िया, तो वो असल में उसका दिल बहलाने वाली बात होती है ना, तो उससे इंशाल्लाह ताला फिर दिल खुश हो जाएगा। फिर इसके बाद अब अगला देखिएगा टॉपिक, जलवत पर खलवत का असर। जलवत पर खलवत का असर क्या है, इसको समझिएगा, बहुत अहम टॉपिक है। खलवत किसको कहते हैं? तन्हाई को। तो जलवत किसको कहते हैं? लोगों पर, लोगों में, यानी कभी हम तन्हा होते हैं, कभी लोगों में होते हैं, गैदरिंग्स में होते हैं, हम लोगों के हजूम में होते हैं, इन दोनों का आपस में क्या रब्त है? खलवत के असरात जलवत पर ज़ाहिर होते हैं, ये लिख लें। यानी जैसी मेरी तन्हाई होगी ना, दूसरों में जाऊंगी तो उसका ज़रूर कुछ असर आएगा। पाकीज़ा तन्हाई दूसरों में आपकी मेरी पाकीज़ा गुफ्तगू का ज़रिया बनेगी, और इसी तरह अल्लाह ताला के कितने मोमिन बंदे ऐसे हैं जो खलवत में अल्लाह ताला के अजाब के खौफ, सवाब की उम्मीद या अजमत इलाही की ताज़ीम में अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को कुर्बान कर देते हैं। ये मर्दियात है ना, मर्ज़ी की चीज़ें, रज़ा की चीज़ें, ये बहुत अहम जुमला है। क्या पता चला? अकेले में गुनाह करना आसान होता है, ऐसे ही है ना, कोई नहीं देख रहा। दूसरों में तो इज्जत ही बनी हुई है, लोग क्या कहेंगे, शर्म भी आएगी, लेकिन तन्हाई में कुछ नहीं। क्या चीज़ उस वक़्त काम आएगी? नंबर एक अल्लाह के अजाब का खौफ, दूसरी बात सवाब की उम्मीद कि अगर इस वक्त नफ्स पे काबू पा लूँगी ना तो सवाब बहुत होगा, तीसरी बात अल्लाह की अजमत की ताज़ीम। कैसे? बस आप देखिए, एक इंसान, आम इंसान हमारे पास हो, वो गुनाह नहीं करेंगे, उसकी शर्म है ना हमें, उसकी अजमत का एहसास है ना, तो फिर क्या अल्लाह की अजमत इतनी भी नहीं है? और हदीस से ये मफहूम मिलता है। हदीस से ये बात मिलती है कि जिस बंदे ने तन्हाई में गुनाह किया और लोगों में छोड़ दिया, या दूसरों में कर रहा था अकेले पे गुनाह और दूसरों को देख के छोड़ दिया, तो अल्लाह को उस पर जलाल आता है कि मेरा तुझे एहसास नहीं हुआ लेकिन दूसरे का हो गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब ये चीज़ें आएंगी ना तो फिर मर्ज़ी की चीज़ें कुर्बान होंगी। मगर इस अमल का असर जलवत पर होता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है, कोई शख्स ऊदे हिंदी, ऊद कहते हैं वो आग जो जलाएं तो खुशबू है, और हिंदी बड़ी मारूफ खूब खुशबू है, आप लोगों ने इतर में भी देखी होगी, यानी ये ख़ास लकड़ी होती है, जब उसको जलाएं तो बहुत खूबसूरत खुशबू आती है। आज के दौर में इसके कई मुख्तलिफ तरीके हैं, आप इसको जला सकते हैं। तो कोई शख्स ऊदे हिंदी की धुनी दे और खुशबू फैल जाए तो लोग इसको सूंघ लेते हैं, और इनको ये मालूम नहीं होता कि ये खुशबू कहाँ से फूट रही है, ऐसी है ना। तो जब आप तन्हाई में कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो नज़र ना आने वाली खुशबू की तरह आपकी अच्छाई दूसरों में फैल जाती है, इससे ये मुराद है। तरक ख्वाहिशात पर मुजाहदे की बकदर मेहनत बढ़ जाती है, और इस खुशबू में बकदरे, यानी जितना बकदर कमरा जितना एज क्वांटिटी कह लीजिए, इस खुशबू में मुजाहदे की कदर ही कमी बेशी होती है। लज्जातों ख्वाहिशात को अल्लाह ताला के लिए कुर्बान करने वालों की तारीफ में लोगों की ज़ुबानें तर और इनकी ताज़ीम में आंखें झुक जाती हैं। जानने वाले और ना मानने वाले भी सभी इनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, हत्ता कि लोगों की ज़ुबानों पर यह जिक्र मरने के बाद भी बकदरे मुजाहदा बाकी रहता है। चुनाचे बास का तस्करा काफ़ी मुद्दत बाकी रहने के बाद भुला दिया जाता है। बास का तस्करा 100 साल तक रहता है, फिर लोग इसको भूल जाते हैं, और बास ऐसे अमल करके दुनिया से रुख्सत होते हैं कि हमेशा इनकी याद और इनका जिक्र बाकी रहता है। हर वक्त हर ज़माने में लोग इनकी खूबियों का तस्करा करते हैं। जहन में हज़रत इब्राहिम ज़रूर आ रहे होंगे आपके भी। इनके मुकाबले लोगों से डरने और खलवत में हुकूकुल्लाह का एहतराम न करने वाले लोगों की मिसाल बदबू फैलाने वाले की तरह है, और ये बदबू बकदरे गुनाह होगी, कम हो तो कम, ज़्यादा हो तो ज़्यादा। अगर गुनाह कम होंगे तो लोगों की ज़ुबानों पर बुराई भी कम होगी, और बसा औकात इंसान बहुत कुछ करने के बावजूद बवजह इर्तकाबे गुनाह गुमनाम रहता है, ना इसकी तारीफ़ होती है ना तनकीद। अब देखिए इसमें से फिर अपने लिए नुक्ते नोट कीजिए, मिसाल समझ आ गई होगी आपको कि अगर कोई तन्हाई में खुशबू फैलाता है तो उसकी खुशबू ज़रूर आती है। इसी तरह जब एक बंदा अपनी ख्वाहिशों को तर्क करने में मेहनत करे, जो लफ्ज़ है ना मुजाहिदा, मुरादे की मेहनत, बहुत मुश्किल है। याद रखिए कुरान में तो खुशखबरी है, वाम मन खाफ मकाम रब्बी ही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़ाइनल जन्नत ही अल मावा, और सूरत रहमान में क्या आते हैं, वली मन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नतान, दो जन्नतें उसके लिए जो اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کو دبانے والا بن گیا. تو کیا پتہ چلا کہ اپنی خواہشوں کو دبانا ہے, وہ خواہشیں جو گناہ والی ہیں. اور جس نے اس طرح کر لیا, کچھ کی تعریف ہے دنیا میں, کچھ کی موت تک, کچھ کی 100 سال اور کچھ کی ابراہیم علیہ السلام کی طرح, وجل لسان اسد کے من فلاخرین, وجل لسان اسد کے فلاخرین کی صورت میں اللہ تعالیٰ بعد کے دور تک ان کی تعریفیں قائم رکھتا ہے. اب آپ دیکھیے, لوگ آپ سے پیار کریں, لوگ آپ کے جانے کے بعد آپ کو یاد کریں, یہ اچھا ہے, یا لوگ آپ کے منہ پہ تعریف کریں اور آپ وہاں سے اٹھ کے جائیں تو برائیاں شروع کر دیں. تو پھر کیا پتہ چلا, ہماری تنہائی کی نیکیاں اور ہماری تنہائی کے گناہ, لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت یا ہماری برائی ڈالتے ہیں. میرے بھائیوں, گناہوں پر غور کرو کہ اللہ کے گناہوں کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, بہت پیارے صحابی تھے اللہ کے رسول کے, کیا کہتے ہیں, انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے لیے نفرت اور بغض پیدا کرتا ہے, لیکن اس کو خبر نہیں ہوتی. بات سمجھیے گا, بڑی بات ہے. یعنی جب کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا, لیکن دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, اللہ اس کے لیے نفرت اور بغض ڈال دیتے ہیں. جو کچھ میں نے لکھا اس کو خوب دیکھو اور سمجھنے کی بھرپور کوشش کرو. اپنی خلوتوں سے غافل نہ ہو, سرم و جہرن یعنی تنہائی میں اور لوگوں میں ہر حالت کو درست کرو, اس لیے کہ اعمال پر ثواب و عذاب کا مدار نیتوں پر ہے. اخلاص نیت پر ہی اجر ملتا ہے. کیا پتہ چلا آپ کو, مجھے آپ کو, مجھے اپنی تنہائیوں کو خوبصورت کرنا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ہوگی. تو آج سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ لوگوں کے دل میں بھی میرا پیار ڈال دے. کیسے, کہ مجھے نیکیوں پہ جمع دے. اس کے بعد اگلا ٹاپک بہت ہی پیارا ہے, گناہ اور توبہ. آئیے ان کا رب پڑھتے ہیں, رب دیکھتے ہیں ان کا کیا ہے. جو شخص ہمیشہ عافیت اور سلامتی کا خواہش ہو, کون نہیں ہے یہ بتائیے, ہم میں سے ہر ایک عافیت چاہتا ہے. عافیت کیا ہوتا ہے, سیفٹی, بیماریوں سے, چوریوں سے, پریشانیوں سے, برف پہ پھسلنے سے, بیمار ہو جانے سے, ہر چیز سے عافیت, رائٹ. اور سلامتی بھی چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہم سلامت نہ رہیں یا ہمارے جسم میں کوئی توڑ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو پھر کیا کریں, اگر آپ اور میں عافیت اور سلامتی چاہتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے خود کو ہر وقت بچاتا رہے, اس لیے کہ جو اپنے نفس کو تقوی کے منافی امور میں کھلا چھوڑتا ہے, جلد یا بدیر اس کی سزا ضرور پاتا ہے. بسا اوقات اس دھوکے میں ہوتا ہے کہ گناہ پر بر وقت سزا نہیں ملی, اللہ تعالیٰ کے احسانات برابر جاری ہیں, تو سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں سے درگزر کر دیا گیا, اور وہ میں یعمل سوئیں یجزا بھی کے فرمان الہی کو بھول جاتا ہے. اس کا مطلب کیا, اور جو کوئی برا عمل کرے گا تو اس کی جزا پائے گا. اور کبھی نفس یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, اور گناہ کروا دیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, لیکن جسے چاہتا ہے اسے معاف کرتا ہے. مغفرت کا مطلب بیان کروں گا, اس کو سمجھو کہ مغفرت اور توبہ کسے کہتے ہیں, جس شخص سے غیر ارادی طور پر غلطی ہو اور دوبارہ کرنے کا بھی ارادہ نہ ہو, اور غلطی اور گناہ سرزد ہو جانے کے بعد غلطی کا احساس ہو اور اس پر نادم ہو کر دربار الہی میں اسے معاف کرنے کی التجا کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں, اور اس کی ندامت و پشیمانی اس گناہ کی گندگی کو دھو دیتی ہے. مثلاً کوئی خوبصورت چیز سامنے آ جائے اور طبیعت اس پر غالب آ جائے اور اس کو دیکھے اور لذت حاصل کرے, تو گویا یہ مال کے نشے کی طرح ہے. پھر اس کو اس کا احساس ہو اور اس پر شرمندگی ہو, تو یہ گناہ, یہ غلطی و گناہ کے آثار کو دھو ڈالے گی. یہ معنی ہے اس فرمان الہی کا, اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کیا جب ان کو چھو جاتی ہے شیطان کی طرف سے ہلکی سی اکساہٹ, یاد ہے کہ شیطان ہمیں بار بار گناہوں پہ مائل کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم پھر اللہ کی نظروں سے گر جائیں, تو کہتے تذکر, ہوش میں آ جاتے ہیں, उनको पता लग जाता है, ओ ये शैतान था जो मुझे दुखी कर रहा था। फैज़ा मुबसिरून, फिर वो खूब देखने भालने लगते हैं। क्या पता चला, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है किसी पे कि उसको पता लग जाए कि शैतान है जो इस वक्त मुझे बहका रहा है। और याद रखिए, शैतान का तो मकसद ही क्या है कि आपको मुझे वरगलाए। उसका मकसद हयात, पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है कि जिस जन्नत से वो महरूम कर दिया गया, वो खुद भी उससे निकल जाए और हमें दूसरों को भी, हम सबको भी निकलवा दे। इसलिए हमेशा इसके फंदों से अपने आप को बचाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह आप देखिए कि नफ्स कभी ये जो बात कहता है, कोई बात नहीं ना, अल्लाह माफ़ कर देगा, फिर और गुनाह करा देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है, लेकिन जिसे चाहता है इसे माफ़ करता है। ये नहीं है कि हर एक को माफ़ कर दे। तो मग़फ़रत फिर क्या है, खुलासा कर लीजिए। मग़फ़रत और तौबा, जिस शख्स से बग़ैर इरादे के गलती हो, यानी पहली चीज़ लिखिए, इरादा नहीं था गुनाह का, आज तो अल्लाह माफ़ करे हमारे इरादे, क्या हमारे तो प्लान छपते हैं, 6-6 महीने पहले से प्लान किए होते हैं कि इस शादी में हमने क्या क्या खराबियाँ रखनी है। टाइम लिए जाते हैं, उनके लिए एडवांस दिए जाते हैं, कई दफ़ा उसके लिए डेट्स चेंज की जाती हैं, अवेलेबल हैं कि नहीं। तो फिर याद रखिए, ये गुना गुना नहीं जो बंदा जानबूझ के करे और सोचे बाद में तौबा कर लूँगा, नहीं, बिला इरादा, गैर इरादी तौर पर। दूसरी शर्त, दोबारा कभी ना करूँ। हम कहते हैं नहीं, अगली शादी में इससे भी बढ़ के करेंगे, अल्लाह में हिदायत दे। तीसरी बात, हो गई गलती या गुनाह, ऐसी हो गई, इरादा नहीं था, नीयत भी नहीं थी, किसी के लिए हो गई, अनजाने में हो गई, तो फिर एहसास हो, शर्मिंदगी हो और अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ करेगा। इसकी नदामत और पशेमानी इस गुनाह की गंदगी को धो डालती है। और हदीस में आता है नदमुत तौबा, दो लफ्ज़ों की हदीस याद कर लें, अन नदमुत तौबा, नदामत ही तौबा का दूसरा नाम है। यानी शर्मिंदगी के बगैर आप 100 दफ़ा भी पढ़ लेना अस्तगफिरुल्ला अस्तगफिरुल्ला, कोई वजीफा ही कर रहे हैं आप, कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपका दिल नादिम और शर्मिंदा नहीं है। मसलन कोई खूबसूरत चीज़ सामने आ जाए और तबीयत इस पर गालिब आ जाए, ये सारी चीज़ें आप देखिए, इससे भी पता चलता है कि बार बार नहीं करना, जान जान के नहीं करना। और गुनाह को बार बार करने वाला और इस पर इसरार करने वाला तो जानबूझकर करने वाला है, खुल्लम खुल्ला हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी करने वाला है, तो मुआफ़ी भी बकदरे इसरार होगी और गुनाह पर सज़ा होगी। जैसे इब्नुल हला का कौल है, वो कहते हैं कि एक मरतबा मेरे शेख, शेख कहते थे उस दौर में उस्ताद को, मेरे शेख ने मुझे एक ईसाई लड़के से बात करते हुए देख लिया, कहा ये क्या हो रहा है, इसकी सज़ा को तुम ज़रूर देखोगे, अगरचे देर से देखो, चुनाचे 40 साल के बाद मैं कुरान भूल गया। अब आप परेशान होंगे, अच्छा गैर मुस्लिमों से बात करना गुनाह, ईसाई लड़के से बात की और कुरान भूल गया और ये हो गया वो हो गया, तो देखिए वो गुफ्तगू अच्छी नहीं होगी ना, वो दावा तो नहीं दे रहा होगा ना, वो उसकी कोई जायज़ काम में मदद तो नहीं कर रहा होगा। सिर्फ ये देखिए उस दौर के उस्तादों का क्राइटेरियन क्या था। आज कोई ओके छोड़े, इतने जजमेंटल है, लो इतनी नसीहतें करते हैं, हर बात नोट करते हैं, और उस्ताद की बात 40 साल बाद याद आ रही है कि जब कुरान भूल गया, कहा अच्छा ये वो मेरा गुनाह था जिस पे उस्ताद ने टोका था। अल्लाह अकबर कबीरा। यकीन कर लीजिए कि गुनाह करने के बाद बदन की सलामती से धोखा खाना सबसे बड़ी गलती है, इसको भी नोट करें। बाज़ कहते हैं हमने गुनाह किया, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो बिल्कुल ठीक है, वो फ़लाँ इतना नेक है क्यों हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, फ़लाँ की बेटी को तलाक की हो गई, वो तो बड़े दीन का काम करते थे। तो देखिए ये बहुत बड़ी गलती है बंदे की कि मैं गुनाह करके भी ठीक ठाक हूँ, तो वो कमर में दर्द के वो तो ठंड लग गई, और वो इधर क्या हुआ, वो तो पाँव फिसला। हम समझते ही नहीं है कि किस गुनाह पे ठंड लगी, किस वजह से पाँव फिसला, हम ज़ाहरी असबाब पे मर रहे होते हैं, लिहाजा इंसान भूल जाता है। इसलिए कि फ़ौरन सज़ा नहीं होती, बल्कि सज़ा अपने वक्त पर आती है। सबसे बड़ी सज़ा तो ये है कि गुनाह का एहसास ही ना रहे, इसको लिखिए। याद रखिए कि जब अल्लाह ताला बंदे से नाराज़ होता है ना, तो उसकी रोटी पानी और उसकी ऑक्सीजन नहीं छीनता, बल्कि उससे गुनाहों का एहसास छीन लेता है, और उसको गलतियों पर अपना दिल ही नहीं मलामत कर रहा होता। चलिए चंद सेकंड सोचें, कोई गलती को गुनाह किया आज मैंने इस 24 घंटे में, यानी आप देखिए 144 हुए हैं ना इस वक्त, कल 144 तक के वक्त को सोचें, मेरे से कोई गुनाह हुआ, मैंने कुछ किया, और क्या मैंने उसको गुनाह समझा, क्या मुझे उस वक़्त एहसास था कि ये गुनाह है, सब था, लेकिन हम ढीले और हम भोले बने रहते हैं। हम कहते हैं जैसे दूसरे देख के हमें इंजॉय कर रहे हैं, तो अल्लाह के फरिश्ते भी देख लगेंगे, हमें कहेंगे ये कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना खुश है इस वक्त। लेकिन याद रखिए, کہ دلوں کا مرجھا جانا اور نفس کا بری خصلت کا عادی ہونا سب سے بڑی عقوبت اور سزا ہے. اب دیکھیں جسم کا جو حصہ سن ہو جاتا ہے نا, اس پہ انجیکشن لگائیں درد نہیں ہوتا. اسی طرح جب دل بنجر ہو جاتے ہیں نا, تو انسان کو برے سے برے ماحول میں بھی ڈر نہیں لگتا. کبھی آپ نے سوچا جب ہم کسی نافرمانی کی محفل میں ہوتے ہیں, صرف چھت گر جائے شور سے, دھمک سے, اللہ کی پکڑ سے, تو ہم بچیں؟ کو زلزلہ آ جائے, صحابہ کہتے ہیں ہم گناہ سے ایسے ڈرتے تھے جیسے پہاڑ ہم پہ گر جائے گا, اور منافق کا حال کیا کہ جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی اس کو اڑا دیا. اگرچہ بدن صحیح سلامت رہے اور مقاصد بھی پورے ہوتے رہیں, یعنی بظاہر آپ کو کوئی سزا نہ ملے, لیکن اگر آپ گناہوں پر بے حس ہو گئے نا, تو یہ اللہ کی سزا ہے. بعض اہل عبرت کا کہنا ہے کہ میں نے جائز امور میں اپنی نظر کو کھلا چھوڑ دیا, پھر اس کی سزا کا منتظر رہا, چنانچہ مجھے بلا وجہ و ارادہ, یعنی بغیر کسی وجہ اور بغیر ارادے کے طویل سفر پر جانا پڑا, جس میں زبردست مشقت سے دوچار ہوا. پھر اس کے بعد میرے وہ قریبی لوگ مجھ سے رخصت ہو گئے جن کا وجود میرے لیے باعث عزت و افتخار تھا, اور میری ایسی ایسی اشیاء ضائع ہوئیں جو میرے لیے بہت فائدہ مند تھی. پھر میں نے توبہ کر کے اس کی تلافی کی تو میری حالت درست ہوئی. پھر خواہشات نفس نے سر اٹھایا اور ایک مرد بانکوں کو غلط استعمال کرنے پر مجبور ہو گیا, مجبور کیا, جس سے میرے دل کی حیات اور اس کا نور اور اس کی رقت و نرمی سب ختم ہو گئی اور پہلے سے زیادہ نقصان ہوا. پھر توبہ کی طرف رجوع کیا اور اصلاح احوال کی درستگی کی کوشش کی اور اس کے اسباب پر غور کیا اور ان کو دور کیا, تو حالات پھر سے صحیح ہو گئے. ذرا سوچئے, کیا اتنی گہری نظر ہماری ہے؟ یعنی ایسے ہی دیکھ لیا ایسی چیز کو جس کو نہیں دیکھنا تھا, تو کیا ہوا, پیارے چلے گئے دور, قریبی لوگ دور ہو گئے جن کے ساتھ بہت خوش تھا, طویل سفر پڑ گیا. اس دور میں تو اب دیکھیں سفر, کسی کو سزا دینی ہو نا تو کہتے تھے اللہ تجھے کسی سفر میں ڈالے. سفر کیا تھا, نیری مشقت, کبھی پیدل کبھی گھوڑوں میں, نہ کھانا نہ پانی نہ کوئی راستے کی سہولیات, آج کے سفر نہیں تھے. اور اب کہتے ہیں جب توبہ کی تو واپس آ گیا, پھر دوبارہ نفس کی خواہشیں پھوئیں تو پھر چل پڑا. یہ دعا مانگی ہے, یہ ہے مبصرون, اللہ ہمیں اپنے اوپر آنے والی ہر مشکل کی وجہ سجھا دے. یہ کیوں آئی ہے, کس کا دل توڑا, کس کی نافرمانی کی, کس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا, کب فجر قضا کی, کب نمازیں ڈیلے ہوئیں, کب کیا کچھ, کہاں میں نے اپنے آپ کو کھول دیا, نہیں کھولنا تھا. یاد رکھیے, گناہ وہ کرے جس میں سزا سہنے کی طاقت ہے. میں اکثر کبھی کسی کو صریحاً ایسے گناہ میں دیکھوں کہ جس کے اوپر کوئی شک ہی نہیں ہے, تو میں کہتی ہوں ہے طاقت اس کو بھگتنے کی. پھر جب کمر میں درد, جب سر میں درد, جب بچے نے آگے سے بدتمیزی کرنی, اور جب شوہر نے بدگمان ہونا ہے, اور جب بہن بھائی تمہارے خلاف ہو جائیں گے, اور جب دنیا میں کوئی ایسی آفت آئے گی جس کی تمہیں وجہ نہیں سمجھ آئے گی, تو یہ وقت یاد کرنا. تو گناہ بڑی جرت ہے بھائی, بڑا حوصلہ ہے. کیا پھر اس کے بعد یوگا کر لیں گے. دیکھیں نا, آپ بہت کیئرلیسلی کھائیں, آپ کہتے ہیں جو کھا لو دیکھیں گے بعد میں, آئس کریم بھی کھا لی, کیک بھی کھا لیا, فرائی چیزیں بھی کھا لی, پھر کیا کہتے ہیں, من چل اور جو ہونا ہوگا دیکھیں گے. اب جو ہونا ہوگا دیکھیں گے نہیں, وہ ہو جاتا ہے. آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا, آپ کو کولیسٹرول لیول ہائی ہوا, ہو سکتا ہے شوگر ہو جائے, آپ کیا کریں گے. نہیں, یہ تو سب کو ہونی ہے, یہ تو موروثی ہے نا, میرے ابا کو بھی تھی, امی کو بھی تھی, بہن بھائیوں کو بھی ہے, چلو جی ہم صاف ستھرے. نہیں, جب ایک بندہ اپنے حالات پہ نظر رکھے, اس کو سمجھ آنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا. پھر آپ دیکھیں, یہ کہتے ہیں جب میں نے توبہ کی تو درست ہوا, اور جب خواہشوں پہ پھر میں نے ذرا سا غلط چیزوں پہ اپنے آپ کو کیا, تو دل کی زندگی چلی گئی, دل کا نور ہی چلا گیا, دل کی نرمی ختم ہو گئی. تین چیزیں ہیں دیکھیے, دل کی زندگی ختم کیا ہے, مردہ دل, دل ہی نہیں خوش, دل مسوسا ہوا, خوشی کا نام ہی نہیں ہے زندگی میں, نور چلا گیا, اندھیرے ہیں, دل سے نرمی چلی گئی, اور پہلے سے زیادہ نقصان ہوا. پھر توبہ کی طرف رجوع کیا تو حال درست ہو گیا, اسباب پہ غور کیا, اللہ نے حالات پھر ٹھیک کر دیے. کہتے ہیں میں ان لوگوں کو آواز دے رہا ہوں جو خواہشات نفس کے سمندر کے ساحل پر ہیں, کہ میرے بھائیوں, اس سمندر کی لہروں سے خود کو بچانے کی بھرپور کوشش کرو. इसके सुकून से धोखा मत खाओ, इसके अंदर हरगिज मत घुसो, साहिल ही में रहो, तकवा के कले से हरगिज बाहर ना निकलो। सजा एक मर्तबा होती है, और ये भी जहन नशीन रखो कि तकवा इख्तियार करने में अगराज कहते हैं गरज, यानी वॉन्ट्स लिख लीजिए, आपकी से क्या गरज है, व्हाट डू यू वॉन्ट फ्रॉम दिस, ये मुराद है। और मर्दियात नफ्स, यानी जिस पे नफ्स खुश हो, और मर्दियात नफ्स का मुकाबला करने में तकलीफ़ होती है, मगर ज़रबुल मिसल है। क्या बुखार के बाद तंदरुस्ती में इजाफा होता है, तकलीफ़ के बाद आसानी ज़रूर आती है। अलहमियतु तादिबु सहा, हमारे यहाँ भी ये कहते हैं ना, बीमारी के बाद सेहत अच्छी, क्योंकि वो विटामिन खा लेगा, आराम करेगा, यखनी पिएगा, लोग खिदमत करेंगे, भारी काम नहीं होगा, तो बाद में देखिए ज़्यादा अच्छी सेहत होती है। इसी तरह लिख लें, फाइन नमाल उसरी यूसरा, तकलीफ़ के बाद ज़रूर आसानी है, बल्कि अल्लाह तो कहता है मा साथ है, विद आफ्टर नहीं है, साथ साथ तकलीफ़ों के आसानियाँ आती जाती हैं, और आसानियों के साथ तकलीफ़ें लगी हुई हैं, जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात। अल्लाह की कसम, अल्लाह की रज़ा के लिए कुत्तों के साथ गंदगी के ढेर में सोना, बड़ी बात है ये, सुनिएगा, अल्लाह आपसे राज़ी है ना, तो जानवरों के साथ आप गंदगी के ढेर पे सो रहे हैं। ख्वाहिशाते नफ्स के खुशनुमा महल्लों में सोने से कई गुना बेहतर है। अल्लाह अकबर, क्या ये बात आज के इंसान और आज के मुसलमान को समझ आती है? आज ये ख्वाहिशें हैं जिन्होंने हमें अल्लाह की नज़रों में जलील व ख्वार किया हुआ है, और हम कहते हैं बड़े खुश, खुश कोई नहीं है, रात जाती मुसीबतें लगी हुई हैं जान को, और एक खुशी का वक्त अल्लाह क्या दे दे, हम कहते हैं जब तक तू नहीं नाराज़ होगा हम भी नहीं छोड़ेंगे, कसर निकालते हैं उस वक़्त। तो बंदा ख्वाहिशों को पूरा करके मोहल्लात में सोए, इससे अच्छा क्या है, अल्लाह की रज़ा के साथ दुख सुख में रह ले। अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया की तमाम अगराज़ो मकासद हासिल कर भी लो, लिख ले, नहीं होती। आप सोचते ना कि अल्लाह को नाराज़ किया है तो सब कुछ मिल जाएगा, चलो नहीं मिलता। आप कहते हैं अल्लाह को राज़ी करेंगे तो ये होगा, नहीं, आप मिलता उतना ही है जितना नसीब में है, ये सब कुछ भी हासिल कर लो तो कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कि ऐसी सलामती सलामती नहीं बल्कि हलाकत है, और आफ़ियत आफ़ियत नहीं बल्कि मरज है। असल एतबार इंजाम का है, अक्लमंद इंसान तो इंजाम को देखता है। अल्लाह तुम पर रहम करे, आजमाइश इब्तला की सख्त गर्मी को बर्दाश्त करो, ये बेसुबात है, यानी बिल्कुल पायदार नहीं है, नॉट परमानेंट, जल्द ख़त्म होने वाली है। असल तौफीक तो अल्लाह ही की तरफ से है, और वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, कितने देखिए अहम टॉपिक्स हैं, और कितना इंसान इस पे गौर करके अपने दिल को पका पाता है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन मेरा मेरे गुना, सीधी सी बात है। और याद रखिए, हमारे यहाँ बचपन से एक जुमला हम सुनते आ रहे हैं, गुनाह बेलज़त, कई गुनाह बेलज़त होते हैं लेकिन हम दूसरों के लिए करते हैं, मैं तो नहीं कर सकती, क्यों, मुझे रब को नाराज़ नहीं करना, और अब तो मैं तुम सबके साथ बैठ के गुनाह करूँगी, लेकिन जब मैंने इसकी सज़ा भुगतनी है तो मैंने अकेले होना है, फिर हो सकता है तुम में से कोई मेरा सर भी ना दबाए, और उस वक्त मेरे दिल पर फाहा भी ना रखे, मरहम भी ना रखे। तो हमेशा अपने आप को गुनाहों से दूर समझें, यकीन कीजिए ये चीज़ें हैं। आज तो लगता ही नहीं है कि उम्मत को ये सबक पढ़ा कर गए थे अल्लाह के नबी, बार बार कुरान में और ख़ास रूप मक्की सूरतों में आता है कि वमा साबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हें जो तकलीफ़ आती है तुम्हारे अपने हाथों का किया दर है। डॉक्टर भी ये कहते हैं, जी आपका अपना किया दर है, जी आपने ये वेट खुद गेन किया, जी आपने अपनी शुगर को खुद ही कंट्रोल से निकाल दिया। अब एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, मर्दियात नफ्स के आगे शिकस्त खाना, ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है। क्या जिस चीज़ पे नफ्स अड़ जाए कि मैंने करना ये गुनाह, और बंदा शिकस्त खा जाए, उसका क्या तरीका है कि बचे, यानी नफ्स की गलत चीज़ें, टेम्पटेशन ऑफ दी नफ्स जो है, उससे अपने आप को कैसे बचाएं कि हम ना हारें बल्कि हमारा नफ्स हार जाए हमें गुनाह कर का कहकर। जैसे हज़रत उमर के बारे में आता है कि शैतान उनको देख के रास्ता बदलता था, तो अल्लाह से दुआ है कि हमें भी इतना स्ट्रॉन्ग नफ्स दे दे कि गुनाह का तसव्वुर भी हमें हिला दे। अगर किसी का नफ्स इसके साथ हराम लज्जत के हसूल के लिए मुनाज़ियत करे, मुनाज़ियत क्या होता है, नज़ा से, नज़ा कहते हैं झगड़े को, नज़ा आप देखें ना, खींचातानी का लफ्ज़ इसके लिए आता है असल में, सच्ची बात है कि नफ्स कई दफ़ा बंदे से खींचातानियाँ ही कर रहा होता है। कभी बच्चा ज़िद में आया हो ना, छोटा दूध पीता बच्चा, माँ कहती है दूध पिए, वो नहीं पीता, इसको हम नाज़ियत कहते हैं। अब इमेजिनेशन लाएं, नफ्स है, गलत लज़्ज़त लेनी है लेनी है लेनी है, और इसके इंजाम में और सज़ा में गौर करने और सोचने की तरफ मुतवज्जे ना होने दे तो इसकी अकल इसको आवाज़ देती है, तेरा नास हो तू नफ्स के कहने पर अमल करता है, ऐसा मत कर, इससे तुम तरक्की की राहें तय करने से रह जाओगे, तुम्हारा अरूज इल्लाह बंद हो जाएगा, ना सिर्फ बंद होगा बल्कि तनज्जुल होगा, और तुझसे कहा जाएगा अपनी पसंद पर बरकरार रह। अगर नफ्स का कहना मानकर अकल की आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहेगा तो बराबर नज़ूल ही होता रहेगा। इसकी मिसाल इस कुत्ते की सी होगी कि इसने एक मरतबा शेर से कहा, ऐ जंगल के बादशाह मेरा नाम तब्दील कीजिए, ये नाम बुरा है। शेर ने कहा, तू ख़यानतकार है, यही नाम तेरे लिए मुनासिब है। कुत्ते ने कहा, मैं खाइन नहीं हूँ, खाइन मीन के डिसऑनेस्ट, ख़यानत करने वाला, ज़रा आजमा कर तो देखिए। तो शेर ने गोश्त का एक टुकड़ा इसको पकड़ा कर कहा, कल तक इसकी हिफाजत करना तो मैं तुम्हारा नाम बदल दूंगा। कुत्ते को भूख लगी, वो बार बार गोश्त की तरफ देखता रहा और सब्र करता रहा, सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, आखिर इससे रहा ना गया। अब इमेजिनेशन में लाया उसने क्या किया होगा। ये होती है हमारे नफ्स की कैफियत, जब हम हार जाते हैं ना तो क्या कहते हैं, कहने लगा आखिर मेरे नाम में क्या खराबी है, मेरा नाम तो तमाम नामों से अच्छा है, यानी मैं अब अपना नाम कुत्ता ही रखूं यही बड़ा अच्छा है, ये कहा और गोश्त खा गया। इसलिए आपको पता है मारूफ है मुहावरा, नफ्स का कुत्ता, लालच, ग्रीड। बिल्कुल इसी तरह कम हिम्मत लोगों का तरीका है, वो कम से कम मर्तबा पर किनात करते हैं, काने होते हैं, यानी वो कहते हैं नहीं नहीं जी, मर्तबा आपको समझ आ रहा है इधर क्या है, ये टर्म्स नहीं है, टर्म्स नहीं है कि एक मर्तबा दो मर्तबा अतला को मरातन, वो नहीं, मर्तबे से मुराद जहाँ रुतबा है। वो कहते हैं हमें थोड़ी इज्जत मिल जाए, हमें थोड़ी थोड़ी बड़ी जन्नत मिल जाए और दुनिया में भी थोड़ी इज्जत हो, लेकिन ख्वाहिशें पूरी कर लें। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं खाओ पियो, मरना तो है ही है, तो कम मर्तबा वहाँ क्या होगा, थोड़ी उम्र ही मिल जाए, बीमारियों वाली मिल जाए, हमने खाना है इस वक्त जो दिल चाह रहा है खाने को, और जल्दी मिलने वाली ख्वाहिश को बाद में मिलने वाली अजीम शान फजल और नेमत पर तरजीह देते हैं। अल्लाह अल्लाह, ख्वाहिश नफ्स की आग इंसान को बर्बाद करके रख देती है, बसा का सिर्फ एक मरतबा फिसलना हलाकत के कुएं में गिरा सकता है, और बस निशानात ते जख्म नहीं मिलते और फौत शुदा मता मुकम्मल हासिल नहीं हो सकती। अलबत्ता फितनों के असबाब से हमेशा दूर रहो, इसलिए कि फितनों के असबाब के करीब जाकर इससे बचना बहुत मुश्किल है। ये बड़ी अहम बात है, जाए ना ऐसी जगह में जहाँ जाके गुनाह करने को दिल करे, सीधी सी बात है, सद्दे ज़राए कहते हैं। और देखिए इस्लाम ने तो कह दिया अल्लाह तकरबुल ज़िना, और मैं अफसोस के साथ कहूँ अल्लाह बरकतें दे मुसलमानों की खुशियों में, किसी भी जगह अगर जाने का या गुजरने का इत्तेफाक हो तो मैं ये सोचती हूँ कि खुशी के मौके पे माहौल क्या बना हुआ है, कितने लोग जहनों और नज़रों और दिलों में जिना कर लेते होंगे इतनी सजी संवरी लड़कियों को, और सबसे बड़ा जुल्म जो इस वक्त हो रहा है ना, कमारी अनमैरिड बच्चियां और बूढ़ी माएं बराबर हो गई हैं, हर एक कहता है कोई हमसा हो तो सामने हो। पहले माओं को अपनी कम बच्चों छोटी बच्चियों को बनाने की होती थी, और जो बीच की जवान होती बच्चियां थी उनके ऊपर तो माएं इतनी सख्त नज़र रखती थी, कोई ज़रूरत नहीं, माँ के छोटे किए हुए कपड़े बच्चे पहनते थे, लड़कियाँ पहनती थी। और आज देखिए माँ कम नहीं बेटी उससे बढ़ के है, अल्लाह मुझे आपको बचा कर रखे, तो मुझे आपको अपने ऊपर इस चीज़ का चेक रखना है, मैंने उधर जाना ही नहीं है जिसके बाद घर आके रोना है, हाय मेरे पास ये नहीं मेरे पास वो नहीं, हाय उसके पास तो इतने अच्छे कपड़े, हाय उसकी तो शादी होगी मेरी तो भी हो नहीं रही, हाय वो तो इतनी प्यारी लग रही थी मैं तो इतनी बुरी हूँ, मैं तो इतनी मोटी हूँ वो तो इतनी पतली थी। याद रखिए जितना आप चमकते दमकते चेहरों के बीच में आ जाकर बैठेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपको अपने ऊपर बाद में गुस्सा आएगा, तो हमेशा हमें अपने आप को बचाना है इन चीज़ों से। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें शैतान के फंदों से बचाए और इसमें हमें सेल्फ कंट्रोल दे। पूरी आज की जो नशिस्त का खुलासा है, सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल करो अपने आप को बचाओ। ख्वाहिशें तो डसे हुए कुत्ते वाले शख्स की तरह, हदीस में आता है कि जिसको कुत्ता डस ले ना तो वो इतना नुकसान नहीं होता उस बंदे को उससे, जितना ख्वाहिशों का डसा हुआ बंदा दुनिया में नुकसान करता और कराता है। تو اللہ تعالیٰ عمل والا بنا دے انشاءاللہ زندگی رہی. تو اگلے ہفتے اس سے نیکسٹ کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چھوٹی سی ایک اناؤنسمنٹ کر دوں جو لوگ گھر سے سن رہے ہیں، خاص طور پہ کہ آج ہمارے دو اور پروگرام بھی ہیں جو انشاءاللہ مکسلر پہ آئیں گے.